मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 2 जुलाई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी है, एकेडमी की जो नेक्स्ट ईयर की जो बैच है वो 28 फरवरी से शुरू होने जा रही है और वो 13 मार्च को खत्म होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 3 नौजवान उन साथियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं जिन्होंने फरवरी बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं वागीश कुमार, आप जगदीशपुर कटिहार बिहार से हैं। प्रवेश कुमार, आप बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। और प्रवीण कुमार, आप भी उसी स्थान से हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से। लग रहा है कि प्रवेश और प्रवीण दोनों शायद दोस्त होंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मित्रों, जब भी इस तरह के नाम मुझे मिलते हैं तो मुझे विशेष खुशी इस मायने में होती है कि अगर एक साथ रहने वाले स्टूडेंट क्लास में यहां आते हैं तो वापस जाकर वे उन इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं, उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप बन सकता है। इसीलिए आप में से जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए सोच रहे हैं, मेरी उन्हें सलाह है कि कोशिश कीजिए कि यदि आपके साथ कोई आपका एक दोस्त आ सके, एक से अधिक दोस्त आ सके, तब 15 दिनों के इस क्लास में जो कुछ भी आपको बताया जाएगा आप उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यदि आप अकेले आ रहे हैं तो फायदा उठाया ही नहीं जा सकता, ये तो केवल उस फायदे को कई गुना करने की बात है। तो मित्रों, वागीश, प्रवेश और प्रवीण, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस इशू पर अभी बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मुझे लग रहा है कि ये इशू आप लोगों को बहुत ज्यादा रास भी आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि नो डाउट कि आप इससे अभी सबसे अधिक त्रस्त हैं। मित्रों, त्रस्त शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझ कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये जो प्रेम की भावना है, स्पेशली इस एज में जिसको हम टीन एज कहते हैं, या अगर मैं उसे कॉलेज गोइंग एज के हिसाब से कहना चाहूं, क्लास के हिसाब से कहना चाहूं, तो कह लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन की शुरुआत का जो दौर होता है, कॉलेज से लेकर के या 10th 11th क्लास से लेकर के और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बिगिनिंग का जो दौर होता है, वो जो दौर है वो वाकई में त्रस्त करने वाला होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे अंदर कोई बहुत ही विलक्षण चीज घटना घटित हो रही है। मित्रों, बस केवल ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई विलक्षण घटना नहीं है, ये बहुत ही एक नेचुरल घटना है। भारतीय समाज के साथ एक दिक्कत यह है कि भारतीय समाज, खासकर प्रेम के मामलों में, हम बात तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, और सच भी है। और भारतीय समाज में आपको जितना पारस्परिक प्रेम दिखाई देगा उतना आपको शायद ही किसी दूसरे समाज में दिखाई दे। यहां जिस मैं प्रेम की बात कर रहा हूं वो रागात्मक प्रेम नहीं है, लड़के लड़की, पति पत्नी, पुरुष स्त्री के ही प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक व्यापक प्रेम की बात कर रहा हूं। लेकिन जब एक रागात्मक प्रेम की बात आती है, यानी कि एक लड़के और लड़की के बीच प्रेम की बात आती है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम की बात आती है, तो हमारे समाज ने बहुत सारे प्रतिबंध इस पर लगा रखे हैं, दूसरे समाजों ने भी लगाए हैं, लेकिन भारत में शायद वो पहले तो बहुत ज्यादा था। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सोसाइटी ओपन अप हो रही है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होता यह है कि ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर नेचुरल तरीके से उठ रही हैं, जब उन्हें दबाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एकदमित होती जाती हैं, या कह लीजिए कि कहीं वो विकृत रूप ले लेती हैं, या कहीं वे अपने स्वरूप के जो ताकत होती है, अपने स्वरूप का जो सौंदर्य होता है उसे खो भी देती हैं। और नतीजा यह होता है कि कुछ का कुछ अर्थ लगा लिया जाता है। कुछ साल पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बता रहा हूं, कुछ साल पहले नहीं, मतलब समझिए कि शायद 5-6 साल पहले घटी हुई घटना होगी, और यह आपको थोड़ा सा रोचक भी लगेगा क्योंकि सिद्धांतों की बात मैं बहुत कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी ऊब भी होने लगे। हम लोग एक विवाह के प्रोग्राम में गए थे, बात भोपाल की ही है, मैं और मेरी पत्नी गए थे, रात का समय था और उसमें मेरे फ्रेंड भी आए थे अपनी पत्नी के साथ जो आईएएस ऑफिसर थे। हम लोग बातें करने लगे, भोजन कर रहे थे, तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उनकी पत्नी को उस दिन मैंने पहली बार साड़ी में देखा और साड़ी उनको वाकई में बहुत सूट कर रही थी, नो डाउट वो पहले से सुंदर थी, सुंदर ही थी, लेकिन साड़ी उनके ऊपर बहुत सूट कर रही थी। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि भाभी जी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इससे बड़ी खुश हुए, बोले कि भाई साहब क्या हम इससे पहले कभी सुंदर नहीं लगे। मैं कहा नहीं भाभी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे पहले भी आप सुंदर लगती थी। बात थोड़ी सी हल्के फुल्के मजाक के स्तर पर आ गई। मैंने कहा नहीं नहीं आप इससे पहले भी सुंदर लगती थी, लेकिन मुश्किल ये है कि मेरे दिमाग में वो फिल्म का गीत बैठा हुआ है, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए मैं डरता हूं, कहीं भूल से ये न समझ बैठे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बोले कि नहीं नहीं भाई साहब आप तो इस तरह से तारीफ करते रहा कीजिए। मित्रों ये मेरे लिए आई ओपनर था, बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना को लेकर के मैंने लिखा भी। इस घटना की दो मुख्य बातें थी, नंबर एक हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, दूसरा यह है कि हमारे अंदर की जो कुंठाएं हैं उस समय की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं जब ये फिल्मी गीत लिखे गए 70-80 के दशक में, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। इस मायने में आज की पीढ़ी के आप सब जो हैं वाकई में बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उसकी एक दूसरी बुरी पोजीशन यह है कि वो प्रेम जंप करके वो वासना के स्तर पर या कुछ और भी अलग विकृत तरीके से वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वहां एक संकट आ रहा है। अब आप देखिए हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, और दूसरा यह कि जो प्रेम से रिलेटेड जो कुछ इश्यूज होते हैं उनके हम कैसे सबके एक जैसे ही अर्थ लगा लेते हैं, जबकि सबके अर्थ अलग अलग हैं और इन अर्थों को आप समझ लीजिए, क्योंकि जो समाज इस मामले में जितना ज्यादा परंपरावादी होगा वो इनके अर्थ उतने गलत लगाएगा। जैसे आप सब समाज में रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कोई एजुकेशन में पढ़ रहे होंगे, अगर कोई एजुकेशन में न भी पढ़ रहे हों तो आपका आपकी अपनी कॉलोनी है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, आफ्टर ऑल हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, वहां डेफिनेटली सबका किसी न किसी से परिचय तो होता ही है, किसी लड़के का किसी लड़की से परिचय होता है, किसी लड़की का किसी लड़के से परिचय होता है। जो दिमाग जितना ज्यादा ट्रेडिशनल होगा या दबा हुआ होगा इस मायने में प्रेम के मामले को लेकर के, तो क्या होगा अगर किसी लड़के लड़की का आपस में परिचय ही क्यों ना हो गया, और वो सामान्य सा परिचय है जैसा कि हम सब करते हैं, सबका होता है, तो पता लगा कि उसी को प्रेम समझ लिया गया, परिचय को ही प्रेम समझ लिया गया। और पहले तो फिल्मों तक में यह दिखाया जाता था कि अगर उस परिचय के दौरान, बातचीत के दौरान अगर थोड़ी सी लड़की मुस्कुरा दी तो पता लगा कि अरे उसने तो हमारे प्रेम बिल्कुल प्रस्ताव को स्वीकार ही कर लिया है, यह भ्रम हो जाता था कि यह तो हमें चाहती है, और अगर वो किसी और के दूसरे को देख करके मुस्कुरा ली तो फिर यह होगा कि यह तो चरित्रहीन है, इसका चरित्र ठीक नहीं। बड़ी विचित्र सी सोसाइटी थी हमारी उस समय की। इस मामले में आप खुले समाज में रह रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को भी खोलना पड़ेगा, तब खुले समाज और आपके खुले हुए दिमाग का सही मायने में तालमेल बैठ पाएगा। तो मित्र जो परिचय होता है वहां प्रेम उस तरह का प्रेम नहीं होता, रागात्मक प्रेम नहीं होता। देखिए शुरुआत तो हर चीज की प्रेम से ही होती है। ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं तो क्या इस ऑडियो गाइडेंस से आपको प्रेम नहीं है? जिस मोबाइल से आप सुन रहे हैं क्या उस मोबाइल से आपको प्रेम नहीं है? प्रेम का मतलब होता है लगाव, तो वो तो सबसे होता है। हमारे जीवन की शुरुआत, दूसरे से संबंधों की शुरुआत होती ही यहीं से है, लेकिन हम जिस अभी प्रेम की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली थोड़े अलग स्तर की प्रेम है, जिसमें एक जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर एज में पैदा होने वाली भावना है। बस इसको हम इसी दायरे में रख करके सोचेंगे और देखेंगे। परिचय को कभी भी आप प्रेम मानने की भूल ना करें। जो कस्बाई मानसिकता है, जो बहुत छोटी जगह से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो गांव से आते हैं, कस्बों से आते हैं, शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, और जब भी थोड़ी सी ऐसी स्थिति आती है तो वो उसे प्रेम मानने की भूल करते हैं। प्लीज बी अलर्ट, आप इसके बारे में सतर्क हो जाइए। दूसरा है मित्रता, फ्रेंडशिप। मित्रों ये फ्रेंडशिप क्या होती है? देखिए एक शब्द है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। मैंने देखा है कि जिस बॉय का कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो वो कॉम्प्लेक्स में है, और ये भी देखा है कि जिस गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड ना वो कॉम्प्लेक्स में है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना आज का फैशन बन गया हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मित्र प्रेम फैशन नहीं है, संबंध भी फैशन नहीं है, और मित्रता भी फैशन नहीं है। ये तो समान मानसिकता या समान हित के बीच में बैठाया गया एक तालमेल है। जो दोस्ती जिस भावना से एक लड़के के दूसरे लड़के के साथ हो सकती है, इतनी स्वस्थ मानसिकता क्यों नहीं है कि उसी तरह की दोस्ती उसकी दूसरी लड़की से भी हो सकती है। लेकिन जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अभी की सोसाइटी में थोड़ा सा अलग अर्थ ग्रहण कर चुका है, वहां यह होता है कि अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो आगे उसको विवाह में तब्दील होना है। मित्रों, स्वस्थ मित्रता भी होती है। आपके क्लास में कोई है, आपके प्रोफेशन में कोई है, उससे आप बड़े हेल्दी माइंड से बात कर सकते हैं, किया ही जाना चाहिए और लोग करते हैं। हमने वो समय देखा है, वहां कहीं कोई विकृति नहीं होती, कहीं कोई वासना नहीं होती, कहीं कोई अधिकार की भावना नहीं होती, उससे कहीं कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, बस मित्रता है तो मित्रता है। तो सवाल यह है कि क्या सच में हम अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को उस लेवल पर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, ये ताकत हम में है, सवाल केवल हमारी दृष्टि का है। तो याद रखिए कि इसे जो मित्रता है, मित्रता एक बहुत ही पवित्र शब्द है। दोस्त यानी कि दो थे, अब एक जैसे हैं, तो एक मानसिकता है, एक हित है, एक यात्रा है, एक मंजिल है। इस तरह की चीजें दो को दोस्त बना देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ट्रेन में 24 घंटे का सफर कर रहे हैं, दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक जगह पर उतरने वाले हैं, तो मित्रता हो गई। तो ऐसी मित्रता क्यों नहीं हो सकती? मित्रों, बहुत से लोग इस मित्रता को भी प्रेम मान बैठते हैं और प्रेम मान करके अपने मन ही मन में बैठे रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब यही मित्रता रूपी प्रेम या प्रेम रूपी मित्रता उनकी कमजोरी बन जाती है, उनको तानाशाह बना देती है कि नहीं, मुझसे मित्रता है ना, वो मेरी फ्रेंड है या वो मेरा फ्रेंड है, तो दूसरे से कैसे बात कर रहा है, दूसरे के यहां कैसे जा सकता है, दूसरे के साथ कैसे घूम सकता है, दूसरे की मदद कैसे कर सकता है, आदि आदि। मतलब वो हमें डिक्टेटर बना देती है। तो क्या प्रेम अधिकार है कि आपको डिक्टेटर बना दे? ये सारे इश्यू है मित्रों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप अपने लिए कुछ चीजें निकाल पाएंगे, अदरवाइज कोई बात बनेगी नहीं। तीसरी बात है फ्रेंड्स कि वाकई में प्रेम है, ये रियल प्रेम है कि आपने किसी को देखा, उससे बातचीत की, या उसके किसी गुण से, किसी योग्यता से, किसी कला से, किसी भी चीज से आप प्रभावित हो गए। ये प्रभावित होने के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे प्रेम का आधार है और ये एक सच्चा प्रेम है, नो डाउट है। और ये भी होता है, जैसे परिचय होता है, जैसे मित्रता होती है, उसी तरीके से प्रेम भी होता है। लेकिन ये जो प्रेम होता है, याद रखिए, ये इतना पवित्र होता है, ये इतना अच्छा होता है कि फिर वहां उस पर अधिकार या पाने की भावना नहीं होती। ये तो सिर्फ देने देने की ही भावना होती है। तू जहां भी रहे, हर खुशी है वहां, रोशनी है वहां, तू जहां भी रहे। ये इसमें ये इच्छा नहीं होती कि साथ इसे मुझे पाना ही है और फिर इस प्रेम को विवाह में तब्दील ही करना है। देखिए, यहां मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक अनाचार भी हो जाएगा कि आप प्रेम किसी और से कर रहे हैं और विवाह किसी और से कर रहे हैं। अगर आप अभिव्यक्त करते हैं तो वो फिर प्रेम नहीं रह जाता, अनाभिव्यक्त प्रेम होता है। प्रेम मूलतः अनाभिव्यक्त है, जिसे आप सिर्फ महसूस करते हैं, जिसकी चर्चा दो दिन पहले मैंने आपसे की थी, और इसीलिए ये चार वर्ग मैंने यहां बनाए हैं प्रेम के। बस आप केवल महसूस कर रहे हैं। मित्रों, देखिए, विवाह अंतिम चरण है, प्रेम विवाह में भी तब्दील होते हैं, और अगर वो हो रहे हैं तो ठीक है, फिर आप देखिए। लेकिन विवाह में तब्दील होने से, करने से उसको पहले उनके दूसरे समीकरणों के बारे में सोचिए, क्योंकि अब जीवन जीना पड़ेगा। जीवन प्रेम नहीं है, प्रेम से जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन प्रेम ही जीवन नहीं है। जैसे कहा जाता है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। आज प्रेम से भी जरूरी कई काम हैं, प्रेम सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। सब कुछ नहीं है, कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो कुछ भी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। फिर आपको जीवन के यथार्थ से सामना करना पड़ेगा, संघर्षों से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब विवाह के बारे में निर्णय लिए जाते हैं तो सारी चीजों के बारे में सोच समझ कर निर्णय लिए जाने चाहिए, और उसके निर्णय का सबसे पहला आधार है कि हम किस तरह का जीवन जीने जा रहे हैं। तो प्रेम अगर अभिव्यक्त हो जाता है तब फिर वो विवाह के रास्ते पर आगे बढ़ता है। अदरवाइज जो अनाभिव्यक्त प्रेम है उसको तो आप सिर्फ महसूस करते हैं, और महसूस करने के दौरान उसे अपनी ऊर्जा में तब्दील कर देते हैं। तो मित्रों, ये मैंने चार वर्ग आपको बताए हैं। मैंने बताया कि ताकि आप अपने अंदर की भावनाओं को इसके पर्टिकुलर परफेक्ट श्रेणी में रख सकें कि आपका परिचय है, आपकी मित्रता है, आपका प्रेम है, या आप विवाह के बारे में भी सोच रहे हैं या चूंकि विवाह करना चाह रहे हैं इसीलिए उसकी प्रेम की पृष्ठभूमि है। इन सारे इश्यूज पर सोचें, अपना मूल्यांकन करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर डेफिनेटली इसको लेकर के समझदारी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस दिन आपके अंदर इसको लेकर के पूरी तरह से समझदारी आ जाएगी, आप देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके अंदर एक ऊर्जा का बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो आकाशवाणी के समाचार का स्टेज है। कल की न्यूज आप लोगों ने सुने होंगे और उस न्यूज में दो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बातें लगी फ्रेंड्स। एक तो डिजिटल इंडिया का शुभारंभ हुआ ही है, डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ हुआ, और दूसरा था दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है। दोस्तों, डेफिनेटली जो डिजिटल इंडिया है एक बहुत बड़ा अभियान है, और मुझे ये लगता है कि जो दिसंबर में जो मेंस होंगे उसमें डिजिटल इंडिया को लेकर के जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई प्रश्न उसमें होना चाहिए। अब सवाल है कि वो प्रश्न किस तरीके का होगा, इस बारे में कम से कम मुझे ज्यादा संदेह नहीं है, सच कहूं तो कोई भी संदेह नहीं है कि डिजिटल इंडिया को लेकर के कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे होता है ना 4G 5G और MB और RAM और ये इस तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, चूंकि हम जनरल स्टडीज के पेपर के अंतर्गत इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका संबंध कंट्री से, कंट्री एज ए होल, सोसाइटी से या समाज के जो दूसरे अंग हैं उन सब से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे न्यूज में आपने सुना कि इसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, यह इन्वेस्टमेंट है। सोचकर देखिए कि 4.5 लाख करोड़ रुपए, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट फर्म भी इन्वेस्ट करेंगी। और आपने देखा कि जब इसका शुभारंभ किया जा रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, तो बहुत से उद्योगपति भी उसमें शामिल थे, उस प्रोग्राम्स में आए थे। डेफिनेटली ये उद्योगपति, उसमें से सबसे ज्यादा संख्या उन उद्योगपतियों की थी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे अंबानी हैं और आपके अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो वाले हैं, और सुनील मित्तल हैं जो भारतीय एयरटेल के हैं, तो इस तरह के जो टाटा के जो मिस्टर साइरस हैं, TCS जिनका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन सब कंपनी के हेड मालिक या CEO आए थे। अब आपको देखना यह है, पहली बात तो यह है कि इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे, तो मेरा सजेशन है कि आप अलग से इसके लिए पेज तैयार कर लें। ये सब्जेक्ट डेवलपिंग है, डेवलप्ड सब्जेक्ट नहीं है कि ये घटना हो गई और बात खत्म हो गई और आपके नोट्स पूरे हो गए। इसे लगातार आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, जो बहुत मेन डाटा होंगे वो आपको शामिल करते जाना है। जैसे कल के न्यूज में जो कुछ मुख्य डाटा जो मुझे मिले, दो डाटा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मिले, वो थे इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा। अब आप देखिए कि ये तो इकोनॉमिक्स की बहुत सामान्य सी बात है और आप सबके समझ में भी होगी कि जब 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा तो वो पैसा कहां जाएगा, वो पैसा सोसाइटी में जाएगा। चाहे आप फाइबर ऑप्टिकल्स बिछा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस खोल रहे हैं, चाहे आप और भी कुछ कर रहे हैं, आफ्टर ऑल ये पैसा मार्केट में आएगा। जब पैसा मार्केट में आता है, कोई भी धन जब मार्केट में आता है, तो सच पूछिए तो आर्थिक विकास को उसी के माध्यम से ही गति मिलती है। आर्थिक विकास को गति नहीं मिल सकती यदि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं उसे अपने घर में रखूं तिजोरी में बंद करके, या फिर मेरे पास जितना भी सोना है उसे मैं अपने घर में रखूं या बैंक लॉकर में रख दूं। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बूस्ट, उसको गति तभी मिलती है जब पैसा सर्कुलेशन में हो। इसीलिए इसका नाम भी है करेंसी, जो करंट शब्द से बना है। करंट का मतलब ही होता है प्रवाह, जो लगातार प्रवाह में है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार इस बात की कोशिश में है कि लोग अपने धन को एक तरह से इन्वेस्ट करें। अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करें, और इस तरह की के जो चरित्र हैं या इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण आपको जगह जगह दिखाई देने लगे होंगे, ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, सिविल सर्विस में आपको यही सब करना पड़ेगा। अब जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब आप देखते हैं कि गोल्ड के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ दिनों पहले ही गोल्ड के बॉन्ड निकाले कि भाई अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो आप सरकार को दे दीजिए, सरकार आपके गोल्ड को ले लेगी और बदले में आपको ब्याज देगी और सरकार फिर उस गोल्ड का इस्तेमाल करेगी। मतलब आपके पास जो गोल्ड नामक जो धन है, जो संपत्ति है, वो इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में आ गया, अब उससे काम होना शुरू हो गया। जनधन योजना का भी आप देख रहे हैं कि गांव गांव में खाते खोल करके सरकार ने आफ्टर ऑल 1200-1500 करोड़ रुपए जुटा लिए। तो 1200-1500 करोड़ रुपए जो लोगों के पास अभी डंप पड़ा हुआ था बिल्कुल, जिसका कोई अर्थ नहीं था, उसको वो कम से कम हमारी इकोनॉमी में शामिल हो गया। इसके बाद आप इस तरह की भी बीच बीच में छोटी मोटी खबरें पढ़ने को आपको मिल जाती है कि जैसे पेंशन फंड में जो पैसा है अब उसमें से सरकार इतना धन शेयर मार्केट में लगाएगी या फलाने में लगाएगी, यानी कि पेंशन फंड का जो पैसा अभी तक एक डेड मनी जैसा है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, सरकार अब उसका उपयोग करना चाह रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की कोशिश है कि कैसे हम अपने यहां के जो हमारे जो साधन है, जो वित्तीय साधन है, उनको एक तरह से प्रचलन में लाएं। और मित्र, जो देश विदेशों से धन आह्वान कर रहा हो, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम बाहर से धन मंगा रहे हैं और बाहर का धन हमें सस्ता नहीं पड़ता है, तो हमारे देश के अंदर ही हमारे पास जो धन है यदि हम उसे ही एक्टिव कर दें तो कितनी बड़ी हमारी आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा है कि इसके बाद न्यूज में वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया, वित्त मंत्री जी ने यही कहा कि अब भारत जो है ना 7-8% विकास गति से संतुष्ट नहीं होगा, उसे अपने विकास की गति को 8-10% तक ले जाना है, तब हमको लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब 4.5 लाख करोड़ रुपए यहां से आएगा, मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का ही पार्ट है, मेक इन इंडिया की कोशिश हो रही कि भारत में आइए और बनाइए, भारत में बनाइए, यानी कि भारत के नाम पर आप बाहर बनाइए, तो भारत में आइए और बनाइए तो उससे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो बट नेचुरली कि रोजगार भी मिलेगा, हवा में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उसी में एक फिर से हमारे पास इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और ये जो लोग होंगे स्किल्ड होंगे। स्किल्ड होने का फायदा ये होता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में होती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। और मित्रों, इसी से ही रिलेटेड आपको मैं एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रेस का है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे धीरे धीरे जो आपके आईटीआई है उस स्ट्रीम में धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, उनकी फिर से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और भारत की क्षमता है कि हम 4.5 लाख लोगों को हर साल ट्रेंड कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो हमारे जो ट्रेंड करने की जो फील्ड है उसमें अब कारपेंट्री वगैरह को भी, चमड़े का सामान बनाना, इन सब को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो भारत एक तरह से स्किल्ड लेबर की तरफ भी बढ़ रहा है या स्किल्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सब देखिए, मैं बात जानबूझ करके अलग अलग स्ट्रीम की इसलिए कर रहा हूं मित्रों, भले ही इसमें आपको सीधे सीधे डिजिटल इंडिया दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कि जब भी कोई घटना घटती है तो कैसे उसको बहुत बहुपक्षीय तरीके से आपको देखना होगा और समझना होगा, तभी आपका दिमाग एक्सपेंड करेगा और अपने आप को सिविल सर्विस के आंसर के लायक बना सकेगा। अब आप देखते हैं कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इसके बारे में कल भी हम लोगों ने काफी बातें की हैं और मैंने कुछ आपको न्यूज आइटम भी प्रोवाइड किए हैं, आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं और मैंने बताया था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए। आज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस के ही 2 एडिटोरियल कमेंट हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट है, ये सब के सब आपको पढ़ने हैं और उसमें से अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने पेज पर लिख लेनी है। आपको इसको कई एंगल से देखना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेक्चर में कहा, उद्बोधन में, कि अब रक्तहीन युद्ध में भारत को नेतृत्व करना पड़ेगा। साइबर के क्षेत्र में वो बात कर रहे थे कि भारत को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, भ्रष्टाचार खत्म करने में इसका क्या रोल हो सकता है, मेक इन इंडिया में इसका क्या रोल हो सकता है, व्हाट इज ई गवर्नेंस वर्सेज एम गवर्नेंस, जो अभी तक जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कहते थे, इंटरनेट गवर्नेंस की बात कहते थे, अब वो किस तरह से मोबाइल गवर्नेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सारे इश्यूज पर आपको विचार करने पड़ेंगे, तब जो डिजिटल इंडिया का जो टॉपिक है उस पर आपकी तैयारी हो सकेगी। अदरवाइज स्ट्रेट क्वेश्चंस की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि साहब डिजिटल इंडिया से भारत का कैसे कायाकल्प होगा, स्पष्ट कीजिए, इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। उसको थोड़ा सा वो ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे जिसमें ये 3-4 चीजें एक साथ शामिल हो जाएं और इनको मिलाकर के फिर आप एक शानदार उत्तर लिख सकें। फ्रेंड्स, जो दूसरा जो दूसरी जो न्यूज थी वो दुष्कर्म मामले को लेकर थी, और अभी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। कल आज के अखबार में न्यूज फॉर्म में थी, और इसके बाद दैनिक भास्कर ने इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात होगी। बात इसलिए होगी क्योंकि जो रेप का मामला एक हुआ था, और रेप के मामले के बाद उस पर समझौता हो गया आपस में, जो आरोपी है और जो वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच समझौता हो गया। चेन्नई हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके खिलाफ जो याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्शन में कहा है कि ये जो दुष्कर्म का मामला है इसमें समझौता अवैध है, समझौते जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है उसकी आत्मा से पूछा जाए कि वो किस तरह का पूरा जीवन जिएगी, तो इसमें न तो किसी मध्यस्थता की जरूरत है क्यों, और न ही किसी समझौते की जरूरत है, क्योंकि ये जो इस तरह का मामला है ये सीधे सीधे महिला का जो सम्मान होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज किया, तीन वर्ड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए हैं, गैर कानूनी, मतलब इस तरह का जो समझौता है वो अपने आप में इलीगल है, गैर कानूनी है, अवांछित, मतलब उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसा कुछ होगा, और फिर थर्ड वर्ड उन्होंने दिया इमोरल, अनैतिक है। इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने आज अच्छा एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आप इसे देखेंगे। मित्रों, अब आप देखें कि ये एक घटना घटी, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही माइल्ड स्टोन डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, खासकर महिला सम्मान को लेकर के और दुष्कर्म के मामलों को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब अपनी बात कही थी तो अपने किसी आधार पर कही होगी, उन्होंने इसको ओके कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट अब उसको खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया है, और बट नेचुरल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा, अब ये एक तरह से कानून जैसा बन गया। इसको लेकर के मुझे जो समझ में आ रहा है, और खासकर जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, और वैसे भी जो जनरल स्टडीज का हमारा पेपर होता है उसका सोशियोलॉजी से बहुत डायरेक्ट रिलेवेंस भी होता है, मुझे एक बात दिमाग में मेरे आ रही है, और वो है सोशल वैल्यूज को लेकर, कि किस तरह से हमारे समाज में एक तो सोशल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से उसका लीगल जो टर्म्स या लीगल जो सिचुएशन है उसके साथ एक तरह का तनाव या संघर्ष जैसी स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति का हल क्या हो सकता है? जैसे अगर हम एक मामला लें, जैसे सेक्शन 377 की हम बात करते हैं, तो समलैंगिकता की बात करते हैं, अभी अमेरिका ने कानून बना करके इसे अपने सभी राज्यों में वैध ठहरा दिया है। देखिए, अमेरिका में होता क्या है कि राज्य अपने कानून खुद बनाते हैं, और एक फेडरल कानून होता है, तो राज्यों में तो थे 50 राज्य हैं, उसमें से शायद 30-35 राज्यों में यह मान्य था, लेकिन पूरे अमेरिका में मान्य नहीं था, तो अब फेडरल कानून के तहत इसको सभी में मान्य कर दिया गया है। देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जब से अमेरिका में यह मान्य हुआ है, भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी, एडिटोरियल कमेंट तक होने लगे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह बात कही थी कि अभी जो कानून है उसके तहत यह वैध नहीं है, और यदि सरकार चाहती है कि इसे वैध किया जाए तो सरकार को विधेयक लाना होगा, कानून बनाना होगा। और सच पूछे तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह सही बात कही, क्योंकि कानून बनाने का हक सरकार को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो बने हुए कानून है उनकी व्याख्या करती है और उसके आधार पर अपने निर्णय देती है। तो अब भारत में भी इस चीज की मांग होने लगी है कि नहीं, इसको वैध ठहराया जाए, लेकिन कानून अभी इसको मान्यता नहीं दे रहा है, तो एक तरह से एक तनाव की स्थिति आ गई है कि सोशल वैल्यूज बदल रहे हैं, इसकी मांग हो रही है, और कुछ लोग आप देखिए कि ओपनली आने लगे हैं और कहने लगे हैं, पहले इसी बात को कहने में उनको संकोच तो क्या शर्म महसूस होती थी, लोग छिपाते थे, अब धीरे धीरे उस पर चर्चा होने लगी है, यहां तक कि उनका एक समर्थक दल भी बन गया है, वो ओपनली इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि किस तरह से हमारे सोशल वैल्यू बदल रहे हैं, और इसी सोशल वैल्यू, स्त्री पुरुष संबंधों की मैं बात कर रहा हूं, सोशल वैल्यू से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो लिविंग इन रिलेशनशिप में आया है, उसको मान्यता दी गई है, लिविंग इन रिलेशनशिप को। आप देख रहे हैं कि उस मान्यता के जो रिपरकशन होते हैं अब सामने धीरे धीरे आने लगे हैं, कि अगर ऐसी स्थिति में बच्चा हो जाता है तो फिर क्या होगा, कितने समय के बाद फिर उसको विवाह की मान्यता दे दी जाएगी, सोशल स्ट्रक्चर का क्या होगा, इस तरीके के संकट आने लगे हैं। अब इस पर देखिए कि आगे वो क्या रूप लेती है। तो जो सोशल वैल्यू और खासकर जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके बीच में जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, उसके संदर्भ में भी हम इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रख करके देख सकते हैं। और जब भी हम ऐसे इश्यूज पर बात करें तो ये तथ्य हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये कंटेंट, कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो मित्रों, न्यूज़ में बस इतने ही थे। अब मैं आता हूँ न्यूज़पेपर पर। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि न्यूज़पेपर आपका अधिक वक्त नहीं लेंगे। कुछ तीन चार क्लिपिंग्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय सहारा का छोटा सा है, मानसून का छलावा, मानसून अभी जो फिर से गड़बड़ कर रहा है उसको लेकर के। इसमें एक दो बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट कही थी, मैंने अंडरलाइन कर दिया। उन्होंने कहा था कि जून में जो हमारे यहाँ बारिश हुई है बेसिकली वो मानसून की बारिश नहीं है। जैसे आपने अल नीनो की घटना सुनी है उसी तरह से इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, मेरे समझ से स्टूडेंट्स को इसे नोट कर लेना चाहिए, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन, जिसको MJO कहते हैं। इसमें होता यह कि जो नमी हवाएं हैं वो पूर्व दिशा से चलते हुए मानसून के क्षेत्र में एंटर करती हैं और फिर वहां संयोग बारिश वहां की हवा से संयोग करके बारिश करती हैं। और अभी जो बारिश हमारे यहाँ जून में हुई है वो इसी तरीके से हुई है, ये उन्होंने कहा है। तो एक अच्छी बात होगा इसे जान लेना, एक नई टर्मिनोलॉजी है। दूसरी बात ये मित्रों की इन्होंने भी वो प्रश्न उठाया कि जो हमारी नेक्स्ट जो क्रांति, हरित क्रांति होनी, वो पूर्वी भारत में होनी है, होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की ये इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और स्टूडेंट को इस पर तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में अगर हरित क्रांति किए जानी है तो वो कैसे संभव हो सकती है। एक अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी है। अगर कभी समय हुआ, कोई प्रसंग ऐसा आया तो अपन उस पर फिर बातचीत हम लोग करेंगे। और मित्रों, आखिरी जो आर्टिकल है वो दैनिक जागरण का है, जिसमें उन्होंने शहरों के लिए जो स्मार्ट सिटी वगैरह की बात हो रही है कि उसके नियोजन में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको लेकर के बात की है। इससे पहले भी मैं इस इश्यू पर काफी आर्टिकल्स प्रोवाइड कर चुका हूं, इसीलिए इस पर विशेष बात करने का कोई अर्थ नहीं है। आप इसे पढ़ेंगे तो एक दो आपको और नई चीजें जानने को मिलेंगी, तो ये आर्टिकल आप नॉलेज सेंटर पर देख लेंगे। मित्रों, अब अंतिम चरण है जो ईमेल का चरण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने ईमेल लिखे हैं। और इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं, पंकज कुमार मिश्रा दिल्ली से, भरत गुप्ता धौलपुर से, ध्रुव वर्मा फरीदाबाद से, राहुल जाजुआ होशियारपुर से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, कपिल चारण जोधपुर से, चंदन पांडे नवादा बिहार से और नीतीश कुमार बेगूसराय से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इसे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।